एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की पड़ताल करने वाले हैं जो हम सबने सुना है, शायद फिल्मों में देखा है या किताबों में पढ़ा है, पागनवाद।
बिल्कुल, और ये शब्द सुनते ही मन में अजीब अजीब तस्वीरें आती है ना?
हाँ, जैसे जंगलों में रहने वाले लोग, कुछ रहस्यमयी रीति रिवाज, शायद जादू टोना।
पर असल में ये है क्या? क्या ये कोई एक धर्म था, या क्या ये आज भी मौजूद है?
ये तो सबसे दिलचस्प सवाल है। और आज जब हम अपनी जड़ों, लोक परंपराओं और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये विषय अचानक बहुत प्रासंगिक हो जाता है।
और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम किसी धर्मगुरु के पास नहीं, बल्कि एक इतिहासकार के पास चलेंगे। हम ओवेन डेविस के काम की गहराई में उतरेंगे, जिनकी किताबें इस विषय पर पड़ी धूल को हटाकर एक साफ तस्वीर पेश करती हैं।
तो चलिए इस रहस्यमयी शब्द पेगन की गुत्थी को सुलझाते हैं
और देखते हैं कि इतिहास की परतें हटाने पर हमें क्या मिलता है।
अच्छा, इससे पहले कि हम डेविस के तर्कों में उतरें, ये जानना जरूरी है कि वो है कौन, क्योंकि देखिए, लेखक का नजरिया ही सब कुछ तय कर देता है।
सही बात है।
और सबसे मजेदार बात यह है कि ओवेन डेविस खुद कोई पेगन नहीं है, ना ही किसी आध्यात्मिक आंदोलन का हिस्सा है।
तो फिर वो इस विषय पर लिख क्यों रहे हैं?
यही तो बात है, वो हर्टफर्डशायर विश्वविद्यालय में एक सामाजिक इतिहासकार हैं। उनकी विशेषज्ञता किसी एक धर्म में नहीं, बल्कि जादू टोने टोटके और लोक विश्वासों के इतिहास में है।
अच्छा,
वो ये देखते हैं कि आम लोग असल में क्या मानते थे, ना कि धर्म की किताबों में क्या लिखा है।
मतलब उनका नजरिया ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर देखने वाला है।
एकदम सही। वो महलों और चर्चों के बजाय गांवों और आम घरों के इतिहास में ज्यादा रुचि रखते हैं,
और इसीलिए वो पैगनवाद को एक धर्म की तरह नहीं,
बल्कि एक लेबल या एक श्रेणी की तरह देखती हैं। उनका असली सवाल ये है कि ये शब्द किसने बनाया, क्यों बनाया, और समय के साथ इसका मतलब कैसे बदला।
मतलब वो सबूतों पर टिके रहते हैं और रोमांटिक कहानियों को इतिहास से अलग करते हैं।
बिल्कुल, यही बात उनके काम को इतना विश्वसनीय और जरूरी बनाती है।
ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमारा गाइड कौन है। अब देखते हैं कि वो हमें इस सफर पे कहां ले जाते हैं। तो डेविस का मुख्य तर्क क्या है?
डेविस एक बहुत बड़ा और यूं कहिए कि चौंकाने वाला दावा करते हैं।
क्या
वो कहते हैं, पैगनवाद नाम का कोई एक संगठित अखिल यूरोपीय धर्म कभी था ही नहीं।
एक मिनट, क्या मतलब? जिस चीज को हम पैगन धर्म कहते हैं वो कभी था ही नहीं? ये तो पूरी धारणा को ही पलट देता है।
बिल्कुल, डेविस का तर्क है कि ये शब्द असल में शुरुआती ईसाइयों ने गढ़ा था। हाँ, एक तरह का समझिए एक डस्टबिन था, जिसमें उन्होंने उन सभी अलग अलग विविध धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को फेंक दिया जो उनके अपने धर्म से मेल नहीं खाती थी।
अच्छा, मतलब ग्रीक, रोमन, सेल्टिक, जर्मनिक।
हाँ, इन सब की अपनी अपनी मान्यताएं थीं, लेकिन ईसाइयों के लिए सब बस एक थे, पैगन।
तो ये चर्चा किसी एक धर्म के बारे में है ही नहीं, बल्कि एक लेबल की कहानी के बारे में।
सही पकड़ा, एक ऐसा लेबल जिसका मकसद दूसरों को अजनबी या कमतर बताना था।
और हम देखेंगे कि इस लेबल का रोल कैसे बदला।
हाँ, ये एक अपमानजनक शब्द से शुरू हुआ, फिर रोमांटिक कवियों ने इसे स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया, और फिर आज आधुनिक आंदोलनों ने इसे गर्व के साथ एक सकारात्मक पहचान के रूप में अपना लिया है।
वाह, ये तो एक शब्द के कायापलट की कहानी है।
बिल्कुल,
तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये शब्द पेगन आया कहां से और इसका असल मतलब क्या था?
अच्छा सवाल है। ये शब्द लैटिन के पेगनिस से निकला है, और इतिहासकार इसके दो मुख्य मतलब निकालते हैं।
दो मतलब?
हाँ, पहला और ज्यादा प्रचलित मतलब है गांव का निवासी या देहाती।
अच्छा, तो ये एक तरह से शहरी लोगों का गांव वालों को नीचा दिखाने का तरीका था, जैसे जैसे हम गवार शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
कुछ वैसा ही। ईसाई धर्म शुरू में रोम साम्राज्य के शहरों में फैला था, तो जो पुराने स्थानीय देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में थे।
तो पैगनस कहने का मतलब था, अरे ये तो पिछड़े हुए गांव वाले लोग हैं।
हाँ, जो अभी तक हमारे नए उन्नत धर्म को नहीं अपना पाए हैं।
और दूसरा मतलब क्या था?
दूसरा मतलब शायद और भी गहरा है। पैगनस का एक अर्थ सिविलियन या आम नागरिक भी होता था।
सिविलियन, सेना के जवान के विपरीत।
बिल्कुल, शुरुआती ईसाई खुद को मिलिटेस क्रिस्टी यानी मसीह के सैनिक कहते थे। तो इस नजरिए से पैगन वो थे जो मसीह की सेना का हिस्सा नहीं थे, वो दूसरे थे।
वाह, तो दोनों ही मामलों में इसका रोल किसी और को बाहर करने का था। एक तरफ हम शहरी मसीह के सैनिक सही रास्ते पर, और दूसरी तरफ वो देहाती सिविलियन भटके हुए।
एकदम। और ये वो लोग कौन थे? ये प्राचीन ग्रीस के लोग थे जो ज्यूस को पूछते थे, रोम के लोग थे जो जुपिटर को मानते थे, और उत्तरी यूरोप के सेल्टिक और जर्मनिक लोग थे
जिनके अपने प्रकृति देवता थे।
हाँ, और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी खुद को पैगन नहीं कहता था।
वो तो बस अपनी परंपराएं निभा रहे थे
जो उनके लिए जीवन जीने का तरीका था।
तो फिर जब ईसाई धर्म पूरे यूरोप में फैल गया तो इन तथाकथित पैगन परंपराओं का क्या हुआ? क्या वे पूरी तरह से मिटा दी गईं?
यहीं पर कहानी और जटिल हो जाती है। डेविस बताते हैं कि ये कोई साधारण प्रतिस्थापन नहीं था जहां एक धर्म खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया।
तो फिर क्या हुआ?
अक्सर ईसाई मिशनरियों ने बहुत चालाकी से काम लिया। उन्होंने स्थानीय पैगन त्योहारों, पवित्र स्थानों, यहां तक कि देवी देवताओं को भी ईसाई रंग में रंग दिया।
अच्छा, इसे ही शायद धार्मिक समन्वय या सिंक्रेटिज्म कहते हैं।
बिल्कुल।
इसका कोई उदाहरण है?
सबसे अच्छा उदाहरण है हैलोवीन का। इसका मूल सेल्टिक त्योहार समहेन में है, जो साल के अंत का प्रतीक था, जब माना जाता था कि जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। जब ईसाई धर्म आया तो चर्च ने इसी समय के आसपास ऑल सेंट्स डे मनाना शुरू कर दिया। त्योहार वही रहा, बस उसका नाम और मतलब बदल गया।
ये तो भारत में भी बहुत देखने को मिलता है, जहां कई स्थानीय देवी देवता और लोक परंपराएं समय के साथ मुख्य धारा के हिंदू धर्म का हिस्सा बन गईं। प्रथाएं जीवित रहती हैं, बस उनका संदर्भ बदल जाता है।
एकदम। लेकिन एक बहुत रोमांटिक धारणा है कि पैगनवाद कभी मरा ही नहीं, बल्कि सदियों तक गुप्त रूप से जीवित रहा लोक कथाओं में, जादू टोने की प्रथाओं में।
डेविस इस विचार को चुनौती देते हैं, है ना?
हाँ, उनका तर्क है कि ये उतना सीधा नहीं है। हाँ, कई लोक प्रथाओं की जड़ें बहुत पुरानी थी, लेकिन समय के साथ उनका असली धार्मिक मतलब खो गया।
मतलब उन पर ईसाइयत का गहरा रंग चढ़ गया।
बिल्कुल। जैसे किसी पवित्र कुएं की पूजा करना एक पुरानी प्रथा हो सकती है, लेकिन मध्य युग में लोग उसे किसी ईसाई संत से जोड़कर पूजने लगे। प्रथा वही रही, पर उसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया।
और इसी से जुड़ी मार्गरेट मरे की विचकल्ट थ्योरी भी है ना?
हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने ये विचार पेश किया कि यूरोप में जिन लाखों लोगों को डायन बताकर मार दिया गया, वे असल में एक प्राचीन प्रजनन धर्म के गुप्त अनुयायी थे।
ये विचार बहुत लोकप्रिय हुआ था, एक बहुत ही नाटकीय कहानी थी।
पर इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। डेविस और अब ज्यादातर इतिहासकार यही कहते हैं विच हंट्स के पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण ज्यादा थे, किसी गुप्त धर्म को दबाने की कोशिश नहीं।
तो फिर सवाल उठता है कि अगर पैगनवाद गुप्त रूप से जीवित नहीं रहा तो ये आज फिर से कैसे प्रकट हो गया? इसका पुनर्जन्म कैसे हुआ?
इसकी जड़ें हमें मिलती हैं पुनर्जागरण में, और खासकर 18वीं-19वीं सदी के रोमांटिक आंदोलन में।
अच्छा।
उस दौर के कवियों, कलाकारों और दार्शनिकों ने चर्च के सख्त नियमों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया।
उन्होंने प्रेरणा के लिए प्राचीन ग्रीस और रोम की ओर देखा।
उनके लिए प्राचीन देवी देवता और प्रकृति पूजा ज्ञान और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए।
बिल्कुल। और इसी बौद्धिक जमीन पर 20वीं सदी में आधुनिक पैगनवाद का पौधा होगा।
जेराल्ड गार्डनर जैसे लोगों ने, जिन्हें विक्का का जनक माना जाता है।
हाँ, उन्होंने पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं और मार्गरेट मरे की थ्योरी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें जोड़कर एक नए संगठित धर्म का आविष्कार किया।
आविष्कार। डेविस यहाँ आविष्कार शब्द का इस्तेमाल जोर देकर करते हैं।
हाँ, क्योंकि ये किसी पुरानी चीज की हूबहू नकल नहीं थी, ये उससे प्रेरित होकर बनाई गई एक नई चीज थी। जैसे कोई शेफ पुरानी रेसिपी से प्रेरणा लेकर एक बिल्कुल नई डिश बना दे।
एकदम सही उपमा है। ये आधुनिक आंदोलन प्राचीन धर्मों की निरंतरता नहीं, बल्कि उनकी एक नई कल्पना है,
और इन्हें आज की दुनिया और आज के मूल्यों के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, ये पूरा इतिहास बहुत पेचीदा और दिलचस्प है। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि पैगनवाद एक गढ़ी हुई श्रेणी है।
हाँ, ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह शब्द हमें उन लोगों के बारे में उतना नहीं बताता जिन्हें पैगन कहा गया, जितना उन लोगों की मानसिकता के बारे में बताता है जिन्होंने ये लेबल बनाया।
ये शक्ति का खेल था। अपनी पहचान को दूसरे से बेहतर बताकर स्थापित करने का एक तरीका।
बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो है अटूट परंपरा का मिथक।
हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि परंपराएं हजारों सालों से बिना बदले चली आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
सही। आधुनिक पैगनवाद किसी गुप्त प्राचीन परंपरा का सीधा वंशज नहीं है, ये पुराने ज्ञान की फिर से खोज और एक नई रचनात्मक कल्पना का नतीजा है।
तीसरा मुख्य संदेश है लोक धर्म का लचीलापन।
कि आधिकारिक धर्म चाहे कोई भी आ जाए, आम लोगों की मान्यताएं और प्रथाएं पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। वे अपना रूप बदल लेती हैं, नए धर्म के साथ घुल मिल जाती हैं, पर जीवित रहती हैं।
और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास।
कौन सा?
कि आधुनिक पेगनवाद, जो खुद को बहुत प्राचीन बताता है, असल में आधुनिकता का ही एक उत्पाद है। ये पर्यावरणवाद, नारीवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आधुनिक मूल्यों से बना है।
बहुत सही। ये अतीत की ओर देखने वाला धर्म जरूर है, लेकिन ये आज के सवालों के जवाब ढूंढता है।
डेविस के काम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं।
हाँ, एक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो इस पूरी बहस का सार है। पेगनवाद का आविष्कार एकेश्वरवाद ने किया था। ईसाई धर्म के उदय से पहले कोई पेगन नहीं थे, केवल रोमन, ग्रीक, सेल्ट्स थे, जिनकी अपनी अलग अलग धार्मिक प्रथाएं थीं।
वाह, ये एक ही वाक्य में पूरी कहानी कह देता है। ये तो पूरी धारणा को ही सिर के बल खड़ा कर देता है।
का ईसाई धर्म द्वारा प्रतिस्थापन नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ मुठभेड़ के माध्यम से दोनों परंपराओं का परिवर्तन था।
ये बहुत गहरा विचार है। मतलब ये नहीं कि एक जीता और दूसरा हारा।
हाँ, बल्कि दोनों एक दूसरे से टकराए और इस प्रक्रिया में दोनों ही बदल गए।
इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है।
और आखिर में आधुनिक पैगनवाद के बारे में ये पंक्ति बहुत सटीक है। आधुनिक पैगनवाद एक प्राचीन धर्म नहीं है, बल्कि एक नया धार्मिक आंदोलन है। यह मॉडर्न दुनिया के लिए एक आधुनिक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है, जो अपनी प्रेरणा पूर्व आधुनिक अतीत से लेता है।
ये इस आंदोलन को उसकी सही ऐतिहासिक जगह देता है। ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक और नया आध्यात्मिक प्रयास है।
बिल्कुल।
तो ठीक है, ये इतिहास और दर्शन की बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन सब बातों का हमारी आज की जिंदगी में क्या महत्व है?
जब भी हम किसी समूह को कोई एक नाम देते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, हमें खुद से पूछना चाहिए, ये लेबल किसने बनाया, इसका मकसद क्या है।
ये तो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, जहाँ सोशल मीडिया पर हर किसी पर कोई ना कोई ठप्पा लगा दिया जाता है।
बिल्कुल। ये हमें सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्षों को समझने में भी मदद करता है। अक्सर समूह अपनी पहचान किसी दूसरे के विरोध में बनाते हैं। हम कौन है ये इस बात से तय होता है कि वो कौन नहीं है।
और उन लोगों के लिए जो अपनी आध्यात्मिक जड़ों की तलाश में हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत ईमानदार रास्ता दिखाता है।
कैसे?
ये हमें सिखाता है कि हम अतीत से प्रेरणा ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि हम एक नई चीज बना रहे हैं। प्रामाणिकता नकल करने में नहीं, बल्कि रचनात्मक होने में।
और एक आखिरी बात जो आज सबसे जरूरी है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। लगभग सभी पैगन परंपराओं में प्रकृति को एक निर्जीव संसाधन नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवित इकाई माना जाता है।
धरती को मां मानना, पेड़ों और नदियों का सम्मान करना।
हाँ, ये नजरिया आज के जलवायु संकट में हमें एक नई राह दिखा सकता है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ी या सबसे आश्चर्यजनक बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ऐतिहासिक निरंतरता और ऐतिहासिक प्रेरणा के बीच का महीन अंतर है। ये समझना कि कोई चीज सीधे तौर पर हजारों सालों से चली नहीं आ रही है, लेकिन आज भी लोगों को प्रेरणा दे सकती है, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। ये इंसान की रचनात्मकता की कहानी है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कैसे सिर्फ एक शब्द पैगन का इतिहास हमें 2000 सालों की राजनीति, शक्ति और पहचान की कहानी बता सकता है। ये सिर्फ धर्म का इतिहास नहीं है।
नहीं,
ये इस बात का इतिहास है कि इंसान दुनिया को कैसे वर्गीकृत करता है, कैसे अपनी सीमाएं खींचता है। एक शब्द में इतना कुछ छिपा हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।